آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ اس عشرے میں انشاء اللہ تعالی مختلف لوگوں سے ملاقات کریں گے، ایسے لوگ جو ہمارے لیے بھی انسپریشن بنے اور ہم ان کی زندگی سے خود بھی اپنے لیے زیادہ راہ لیں. آج ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جن کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے. ایک رات وہ گشت کرتے ہوئے ایک ایسے گھر کے پاس سے گزرے جس میں ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. بیٹی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ خلیفہ نے اسے منع کیا ہوا؟ تو ماں نے کہا کہ خلیفہ یہاں تھوڑی دیکھ رہے ہیں. بیٹی نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی پسند آئی اور اس لڑکی کے خوف خدا کو جان کے وہ اپنے گھر آئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو شادی کرنی ہے تو فلاں لڑکی سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو ان کے بیٹوں میں عاصم بولے کہ میری بیوی نہیں ہے، آپ اس سے میرا نکاح کر دیں. اس لڑکی کے ساتھ حضرت عمر کے بیٹے عاصم کا نکاح ہو گیا اور حضرت عمر نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ بیٹا اس لڑکی سے نکاح کرو کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ اس سے کوئی شاہ سوار پیدا ہو اور عرب کا سردار بنے. لیکن جب عاصم نے اس لڑکی سے شادی کی تو بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام عاصم کہا جاتا ہے. یہ بڑی ہوشیار بچی تھی اور بڑی خوبیوں کی مالک تھی. جوان ہوئی تو حدیثیں اپنے باپ سے بیان کرنے لگی. اب جب یہ جوان ہوئی تو ان کی شادی عبد العزیز کے ساتھ ہوئی. عبد العزیز بن مروان یہ بھی امیہ اموی خاندان کے بہت بڑے لوگ تھے اور بہت مالدار تھے، انتہائی اونچے طبقے کے امیر تھے. انہوں نے بڑی شاندار اور عالی شان عمارتیں اور یادگاریں دیکھیں مصر میں. تو اپنے خاندان کے عمرا خلفاء سے عمارتیں اور بڑی بڑی چیزیں انہوں نے بنائیں، اپنی رہائش کے لیے بھی ایسا ہی مکان بنایا اور بڑے ٹھاٹ باٹ والے تھے. انہوں نے مہمان خانے بھی بنوائے جس میں ہزار ہزار لوگ ایک دن میں کھانا کھایا کرتے تھے، بہت مہمان نواز تھے. تو ان دونوں کی جب شادی ہوئی، یعنی ام عاصم کی اور عبد العزیز کی، تو ان کے ہاں چار بیٹے پیدا ہوئے. ان میں ایک عمر تھے جن کو عمر بن عبد العزیز ہم کہتے ہیں. اور ان کی تربیت ان کی والدہ نے مدینہ میں کی، اپنے میکے بھیج دیا تھا. ویسے وہ مصر میں رہ رہے تھے لیکن ان کو مدینہ بھیج دیا کہ یہاں پہ ان کی تربیت اچھی ہو اور ننیال میں پلیں گے تو وہاں پہ اور بھی ان کے لیے اچھا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے جو چچا تھے وہ خلیفہ تھے اس وقت مسلمانوں کے، ان کا نام عبد الملک بن مروان تھا. انہوں نے اپنے بھتیجے کے لیے 1000 دینار ماہانہ وظیفہ جاری کیا ہوا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز کی جو پرورش تھی وہ بڑی نعمتوں میں ہوئی، بہت نعمتوں میں. ناز و نیام میں پلے تھے اور سمجھ لیں کہ سرداروں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. جوانی میں بہت خوبصورت تھے اور لوگ آپ کو دیکھ کے ٹھٹک جایا کرتے تھے. آپ خوشبودار تیل لگا کے کسی راستے سے گزرتے تھے تو راستے میں خوشبو کی لپٹیں بکھر جاتی تھیں. لوگ دھوبی کے دروازے پہ آپ کے کپڑوں کا انتظار کرتے تھے کہ پھر جب آپ دھوبی کے پاس اپنے کپڑے بھیجتے تو لوگ اس کے بعد کہتے کہ वो पैसे दे के कहते थे कि इसके बाद हमारे कपड़े धोएं, क्योंकि उनके कपड़ों में जो खुशबू लगी रहती थी उस पानी में आ जाती थी जिससे उनके कपड़े धुलते थे। तो अब लोग चाहते थे कि अब उसी पानी में हमारे कपड़े धोए जाएं ताकि वो ही खुशबू आए। इनकी चाल भी बड़ी फख्र वाली थी और बड़ी नाज वाली थी, और इन्होंने लंबे बाल रखे हुए थे, उनमें कंघी करते रहते थे, उंगली में अंगूठी पहनते थे, उसका नगीना बड़ा कीमती होता था, और कीमती चादरें पहनते थे, हत्ता कि एक एक तहबंद 100-100 दीनार का खरीदते थे, और कोई रेशमी चादर 800 दिरहम की खरीदा करते थे, और कपड़ों में इतना ज्यादा इसराफ करते थे कि कभी कहा करते थे कि कहीं मेरा वजीफा सारा मेरे कपड़ों में ही ना खर्च हो जाए। एक दफा जो लिबास पहन लेते थे और लोग उसको देख लेते थे तो कहते थे अब ये पुराना हो गया क्योंकि लोगों ने देख लिया। तो इनमें ऐश व इशरत नुमाया था, अपने गुलामों और नौकरों के झुरमट में निकला करते थे, और अगर तहबंद का कोई पल्लू जूते में अटक जाता तो उसको खींच के फाड़ देते थे, और उसको जूते से निकालने के लिए झुकते नहीं थे। यानी इतने ज्यादा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितने ठाट बाट थे इनके। चादर का कोई पल्लू कंधे से अगर सिरक जाता था तो उसे उठाने में अपनी शान में कमी समझते थे। जूते का तस्मा टूट जाता था उसको छोड़ देते थे। अगर कोई खादिम उसको उठा के लाता था तो उसको डांट देते थे और जूता ही फेंक देते थे। तो इनके जो गुरूर के अंदाज थे वो दिन ब दिन बढ़ते रह रहे थे, हत्ता के लोग कहने लगे थे कि इनमें बड़ा ही गरूर है। इनके एक और बात कि हजरत उमर ने एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब सब में मशहूर था। उन्होंने ख्वाब देखा था कि मेरी औलाद में एक आदमी पैदा होगा जिसके चेहरे पे जख्म होगा और वो जमीन को अदल से भर देगा, और वो मेरी सीरत अपनाएगा। और इनकी शक्लो सूरत हजरत उमर से बहुत मिलती थी, इसीलिए इनके ननिहाल वाले इनको बहुत लाड करते थे और ददियाल की तरफ से बहुत माल भी मिला था। अच्छा, अब हजरत उमर का ये ख्वाब जो था ये लोगों में बड़ा मशहूर था, तो ये वैसे इनकी सारी पर्सनैलिटी हजरत उमर की यानी शक्लो शबाहत में उनसे मिलते थे, लेकिन ऐसा कोई जख्म का निशान नहीं था जैसे उन्होंने ख्वाब में देखा। लेकिन एक दफा ये गए अस्तबल में, वहां पे घोड़े ने इनको मारा तो इनके माथे पर जख्म आ गया। अब इसके बाद काफी लोग कहने लगे ये वो ही हैं जिनके बारे में हजरत उमर ने ख्वाब देखा था। अच्छा, फिर इनको मदीना के अंदर इनके तरबियत तालीम दी गई तो हिफ्ज़े कुरान किया इन्होंने, दरसे हदीस में मशगूल हो गए और बड़े बड़े सहाबा और ताबईन से रिवायत करते थे, बयान करते थे हदीसें, बड़े सहाबा से इन्होंने इल्म हासिल किया। फिर इनकी शादी जो थी इनके चचा जो खलीफा थे जिन्होंने इनके लिए वजीफा मुकर्रर किया था, उनकी बेटी फातिमा से हो गई, और जाहिर है वो भी एक शहजादी थी। और उस वक्त जो मुसलमानों की हुकूमत थी वो कई कॉन्टिनेंट्स पे थी। तो अब इसके बाद जो अब्दुल मलिक की जब वफात हुई तो उसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना, और वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। यानी इनके जो साले थे वो दोनों खलीफा बने, तो उस लिहाज से भी इनके हकूमत में कहीं ना कहीं शमूलियत रही, उनको सीखने का भी मौका मिला। जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वफात पाने लगा तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को देता हूँ हकूमत, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़े आलिम थे रिजा, और रिजा जो थे वो बहुत करीबी थे सुलेमान के। उन्होंने उसको मशवरा दिया कि देखो अगर तुमने अपनी आकबत संवारनी है ना तो उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बना। तो सुलेमान ने एक यानी लेटर में उनका नाम लिख दिया, और वो लेटर खोला नहीं गया, वो अहदनामे पे मोहर लगी हुई थी, और उसने कि ताकि किसी को पता ना चले, फिर अगर कोई पता चल जाता तो जाहिर है ये चचा के बेटे थे। आपको पता है कजन्स के अंदर कितनी टसल हो जाती है, और खास तौर पे ये शरीका कहलाता है चचा ताया के बच्चे। तो जब सुलेमान की वफात हुई तो उसके बाद रिजा ने उसकी जो अहदनामा था उसकी मोहर तोड़ने से पहले लोगों से कहा कि लोग जो कुछ इसमें है, जिसका नाम इसमें है, उसके ऊपर आपको बैत करनी पड़ेगी। लोगों ने हामी भर ली और इस नाम के ऊपर बैत की। अब जो अब्दुल मलिक का खानदान था, और भी बेटे थे जाहिर, तो वो काफी परेशान थे कि हमारे में से किसी का नाम होना चाहिए, लेकिन नाम किसका निकला? हजरत उमर का, उमर बिन अब्दुल अजीज। जब इनका नाम अनाउंस हुआ तो ये मस्जिद में सबसे पीछे लोगों में बैठे हुए थे, और अपने खलीफा बनने पे इन्होंने इन्ना लिल्ला पढ़ा। कहते हैं, मैं अल्लाह जानता है मैंने जाहिर व बातिन में कभी खिलाफत नहीं चाहती। और रिजा उमर की तरफ बढ़ते हैं ताकि खिलाफत आपको सौंप दें, तो उमर से दरख्वास्त करते हैं आप मिंबर पे आएं और कुछ फरमाएं। उमर बोले, रिजा खुदारा मुझे इससे अलग रखो। उन्होंने कहा, ऐसे ना कहें, लोग फितने में पड़ जाएंगे, फूट पड़ जाएगी। आखिर इस तरह से उन्होंने उमर को मनाया और इनको बाजू से पकड़ के लाके मिंबर पे खड़ा कर दिया। पर मिंबर पे आके ये बड़ी देर खामोश रहे और लोग मुंतजर हैं। उसके बाद लोगों से कहते हैं, लोगों मैं इसकी चाहत नहीं रखता था, मुझे इसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी खिलाफत की, और ना ही मुझसे मशवरा किया गया। मैंने अपनी बैत से जो तुम्हारी गर्दन में है तुमको आजाद किया है, तुम खुद अपने लिए खलीफा चुन लो। ये सुन के लोग घबरा गए और उनको बड़ी हैरत हुई कि ये क्या कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपको ही खलीफा चुनते हैं। जब खलीफा बन गए तो जो पहला इन्होंने खुतबा दिया, लोगों ने जब इनसे बैत कर ली ना, पहला खुतबा दिया तो यही दिया कि मैं तुम्हें तकवा का हुक्म देता हूँ, क्योंकि तकवा हर चीज के लिए, इसका बदल कोई चीज नहीं हो सकती, इसलिए अपनी आखिरत के लिए अमल करो। और यहां से इनकी जिंदगी जो थी ना, वो बिल्कुल यकसर बदल गई। फरमाते हैं, अपने बातिन को संवार लो, अल्लाह ताला जाहिर भी दुरुस्त फरमा दे और बातिन भी, और कसरत से मौत को याद करो, और मौत के आने से पहले इसके लिए अच्छी तरह तैयारी कर लो। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक किसी को तुम जिंदा नहीं पाते। फिर फरमाते हैं, लोगों जो अल्लाह का इताअत गुजार है उस पर मेरी इताअत भी वाजिब है, और जो अल्लाह का नाफरमान है उस पर मेरी इताअत नहीं। मेरी इताअत करो जब तक मैं अल्लाह की इताअत करता रहूं, और अगर इसकी नाफरमानी करूं तो तुम मेरी इताअत ना करना। और फिर मिंबर से उतर के रोने लगे। तो लोगों में खुसर पुसर होने लगी, जो उनके मुखालिफिन थे वो कहने लगे, देखो असल में खुशी में रो रहा है। जब ये खलीफा बने ना, तो सबसे पहले अपना जो जाती इनकी जायदादें थी वो फरोख्त करके बैतुल माल में जमा करा दी, और जो सारी सरकारी सवारियां लाई जाती थी वो उन सबको वापस कर दिया, क्योंकि जाहिर खलीफा के बड़े ठाट बाट होते थे। इतनी सवारियां थी जो खलीफा के लिए होती थी, उससे जमीन हिल जाती थी, इतनी सवारियां आती थी। तो जब आप अपने घर से निकलते हैं, देखते हैं घोड़े कतार दर कतार खड़े हैं, उन पर सवार हैं, तलवारें सूंढ़ते हुए हैं, कनातें तनी हुई हैं, खैमे गड़े हुए हैं, आपके आगे पीछे मुहाफिज दस्ता है। उमर ने उनसे कहा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम सबको आजाद किया, मैं भी दूसरे मुसलमानों की तरह एक आम मुसलमान। फिर आप अपने खच्चर की तलाश में कतारों में घुस गए और अपने खच्चर पे सवार हो गए, और बहुत से सिपाही और पहरेदारों को बरतरफ कर दिया, 600 से ज्यादा थे ये। आप इमेजिन करें कि कोई इंसान इतनी बड़ी ममलिकत का खलीफा बन जाता और फिर खुद ही अपने ऑप्शन से सब कुछ गिव अप कर देता। फिर अपने बेटे के कुर्ते पे इनकी नजर पड़ जाती है तो उसका कुर्ता भीड़ में फट गया था। उसे फरमाते हैं, बेटे अपने कुर्ते का गिरेबान दुरुस्त कर लो, क्योंकि तुमको इसकी इतनी जरूरत कभी नहीं थी जितनी अब होगी। अपनी बीवी से कहा कि अपने जो जेवरात वगैरह हैं वो सब दे दो, बैतुल माल में जमा करा दिए जाए। अब वो भी एक शहजादी थी, सोचें उनके वालिद भी खलीफा थे, अब्दुल मलिक, फिर भाई खलीफा बना वलीद, फिर सुलेमान, और अब शौहर खलीफा बन गए। तो वो भी बड़े नाजो नाम में पली थी। इसी तरह जैसे अपनी बीवी के साथ किया, इसी तरह अपनी औलाद के साथ भी किया। इनके बारे में आता है कि एक दफा ईद करीब थी तो बीवी ने कहा कि बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े लेने, तो सारे दोस्तों ने नए कपड़े बनवाए हैं। वो कह रहे हैं हमारे भी नए कपड़े होने चाहिए, हमारा बाप तो अमीरुल मोमिनीन है, हमारे वैसे कपड़े नहीं है। तो तुमर ने फरमाया मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाके दूँ। तो बीवी ने कहा कि आप ऐसा करें बैतुल माल से कुछ पैसे ले लें एडवांस। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जब बैतुल माल के जो जो भी खजानची था उससे जाके कहा कि मुझे एडवांस दे दो, मैं लौटा दूंगा अगले महीने। तो उसने कहा कि आप ये बताइए कि अगले महीने तक आप जिंदा रहेंगे, अगर आप जिंदा रहने की गारंटी देते हैं तो मैं मुसलमानों के माल में से आपको दे देता हूँ, और अगर आप नहीं जमानत दे सकते तो कयामत के दिन आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। ये सुन के चीख पड़े। तो यानी इतना ज्यादा इनके अंदर तकवा था, इतने ये नहीं कि लोगों को नसीहत करते थे, खुद के अंदर भी बहुत ज्यादा तकवा था। और अपने जो भी उमरा थे उनको जमा किया और उनको कहा कि अगर तुम्हारे जिम्मे लोगों के हकूक हैं तो उन्हें अदा करो, क्योंकि इनसे पहले बड़ा जुल्म हो रहा था। इसलिए तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने ये अपनी ख्वाब की ताबीर बताई थी ना कि एक आदमी ऐसा आएगा जो अदल से जमीन को भर देगा, उस वक्त बहुत जुल्म होगा। तो फरमाते हैं मुझे इस बात पे मजबूर ना करो जो मैं नापसंद करता हूँ, तुम मेरे अंदाजे के मुताबिक इस उम्मत का आधा या दो तहाई माल तुम्हारे कब्जे में है, ये जो अमीर लोग बैठे। ये सुन के वो सारे खामोश हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। हशाम बिन अब्दुल मलिक जो इनका कजन था, चचा का बेटा, उसने कहा जो माल हमें हमारे बुजुर्गों से मिला वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने बापों की नाशुक्री करें और अपने बच्चों को गरीब नादार बना दें, जब तक हमारे सार हमारे जिस्मों से अलग नहीं हो जाते हम ये माल नहीं छोड़ेंगे। और अमीर लोग बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब जी ये हमारे से माल ले रहे हैं। और इसी तरह जो गुलाम लोग थे उन्होंने सोचा कि जब ये खलीफा बन जाएंगे तो हमारे तो बड़े ठाट बाट होंगे, क्योंकि गुलामों का भी तो फिर एक रोब हो जाता है ना कि ये किसका गुलाम है। लेकिन उल्टा उनके पर भी ज्यादा बोझ पड़ गया। तो ऐसे लोगों को जो समझते थे कि इनके साथ रहने के बाद हमारा भी कुछ बन जाएगा, वो सब बड़े मायूस हो हुए। इनके बारे में आता है कि ये लोगों को ऐसा आवाज करते थे, ऐसी बातें करते थे कि लोग रो पड़ते थे। लोगों से कहते थे लोगों कयामत का दिन दूर ना समझो, इसके आने में एक लंबा अरसा नहीं है, क्योंकि जिसे मौत आ जाती है उसके लिए कयामत आ जाती है। फिर नेकियों में इजाफा नहीं कर सकेगा और गुनाहगार गुनाहों से तौबा नहीं कर सकेगा। तो जो कुछ करना है वो इसी जिंदगी में कर लो। तो इनके वाज ऐसे होते थे कि जो लोगों के दिलों के अंदर जाते थे। और एक दफा ये एक जनाजे के साथ तशरीफ ले गए और कब्रिस्तान में पहुंच के अलहदा एक जगह बैठ के कुछ सोचने लगे। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, अलहदा बैठे हुए। फरमाया मुझे एक कब्र ने आवाज दे दी और मुझसे यूं कहा है उमर बिन अब्दुल अजीज तू मुझसे नहीं पूछता कि मैं इन आने वालों के साथ क्या करती। मैंने कहा तू जरूर बता। उसने कहा इनके कफन फाड़ देती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, खून सारा चूस लेती हूँ, गोश्त खा लेती हूँ, मैं इनके जोड़ों के साथ ये करती हूँ, इनके बाजुओं इनके मोंडों के साथ ये करती हूँ, और रानों को घुटनों से अलग कर देती हूँ, घुटनों को पिंडलियों से अलग कर देती हूँ। ये फरमा के इतना रोए और फरमाया दुनिया का कयाम बहुत ही थोड़ा है और इसका धोखा बहुत ज्यादा है, आज का इज्जत वाला आखिरत में जलील है, इसमें जो दौलत वाला है वो आखिरत में फकीर है, इसका जवान बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाने वाला है और इसका जिंदा बहुत जल्दी मर जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इनका तकवा कितना था। इनके बारे में आता है कि रातों को बहुत रोते थे, तो इनकी बीबी पूछती थी कि आप क्यों इतना रोते हैं, तो फरमाते थे कि मुझे खिलाफत का बोझ मेरे ऊपर लाद दिया गया और मेरी हुकूमत में कोई स्याह सफेद हो, कोई कुछ भी हो, उसका मैं इमाम बना दिया गया। तो जब मैं सोचता हूँ नादारों का, मोहताजों का, मजबूरों का, तो मैं ये सोच के रोने लगता हूँ कि अल्लाह ताला इनके बारे में मुझसे हिसाब करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में मुझसे झगड़ेंगे, तो मैं अल्लाह ताला के सामने क्या उजर पेश करूंगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा, मुझे अपनी जान का खटका लगा हुआ। अल्लाह अकबर। इनके बेटे ने एक दफा इनसे कहा कि मुझे शादी करनी है तो मुझे बैतुल माल में से कुछ पैसे दे दें, और बैतुल माल से दिए जाते थे लोगों के लिए, ऐसे नादारों के लिए, शादी के लिए। कहने लगे नहीं, तुम्हारे पास पहले से बीवी है, अगर तुम्हें शादी करने का इतना ही शौक है तो अपनी कोई चीजें बेच के और उसे शादी कर लो, लेकिन यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लोगों की खिदमत के लिए बैठ जाते थे, अगर शाम हो जाती थी तो आप लोगों के कामों से फारिग नहीं होते थे तो रात भर बैठे रहते थे, और फिर जब काम से फारिग होते थे फिर अपना चराग मंगवाते थे अपने जाती माल से और वो जलाते थे और फिर रोते रहते थे, रात को रोते थे, रातों को रोते थे, सुबह तक रोते रहते थे, यही अपनी ऊपर इस जिम्मेदारी को सोच के। और किसी सरकारी चीज में से अपने लिए नहीं लेते थे, ना अपने बच्चों को उसमें से देते थे। और इनकी खूबियों में से एक चीज ये बड़ी है कि बहुत ज्यादा यानी जो ये बताते थे, जो वाज करते थे, वो लोगों के दिलों को इतना नरम कर देता था, और उसके बाद वो इनके जुमले जो होते थे वो लोग याद रखते थे, ज़र्बुल मिसल बन जाते थे। और उनमें से एक जुमला ये था लोगों में मशहूर कि ये दुनिया का कयाम जो है ये बहुत ही थोड़ा है। इसी तरह एक कुछ बातें और थी कि इसकी वो बंदा जिसकी उम्मीदें बहुत वसी हैं, उसको पता नहीं है कि शायद वो सुबह के बाद शाम ना करे और शाम के बाद उसकी सुबह ना हो और उससे पहले ही मौत उसको ले जाए। और ये नहीं कि सिर्फ तकरीर करते थे बल्कि उसके बाद उनका अमल भी वैसा ही था। इस कदर ज्यादा तकवा था इनके अंदर कि अपने बच्चों को के ऊपर भी कभी ऐसे खर्च नहीं किया था कि इतने बड़े खलीफा होने के बावजूद कि बहुत घर आना खुशहाल हो। एक दफा घर आए, देखा कि बेटियों ने मुंह पे कपड़ा रखा हुआ, तो कहने लगे क्या बात है, मुंह पे कपड़ा क्यों रखती हो? तो बीवी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बेटियों ने कच्चे प्याज से रोटी खाई, इसलिए इनके मुंह से बदबू आ रही। और ये वो है, तीन कॉन्टिनेंट्स पे इनकी हुकूमत थी, सब इनके सामने सर झुका के खड़े होते थे, तो रोने लगे, कहने लगे मेरी बेटी, मैं तुम लोगों को अच्छे खाने खिला सकता हूँ मगर तुम्हारा बाप जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे सामने दो रास्ते हैं, तुम्हें हलाल हराम इकट्ठा करके खिला देता और खुद दोजख में चला जाता, और दूसरा रास्ता ये है कि तुम ये बर्दाश्त कर लो। मौत का वक्त जब आया ना, तो इनके जो साले थे मुस्लिमा, उन्होंने कहा कि इनके लिबास तो तब्दील कर दो, मैला हो गया, उन्होंने कभी मैले तो कपड़े पहने नहीं थे। तो बीवी ने कहा ए भाई अल्लाह की कसम इनके पास एक ही जोड़ा है, तब्दील कहाँ से करूं। और इनके बच्चे इनके लिए कुछ भी ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे थे, तो उनके मामू ने यही कहा कि मैं आपको 1 लाख दीनार देता हूँ, अपने बच्चों को दे दें, मेरे भांजों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। उन्होंने कहा नहीं, जाओ इस पैसे को उनको दो जिनसे जिनके ऊपर जुल्म करके तुमने ये पैसा कमाया, मेरे बच्चों को हराम नहीं चाहिए। और मरने से पहले अपने बच्चों को बुलाया और फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की दौलत छोड़ के जा सकता था और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना सकता था, लेकिन तुम्हारा बाप जहन्नुम की आग नहीं सह सकता। और अब मैं तुम्हारे लिए यही छोड़े जा रहा हूं। 11 दीनार छोड़े थे इन्होंने, इनको असल में जहर दे दिया था इनके कजन ने, और इनको फिर पता चल गया था कि मुझे जहर दे दिया गया। इनकी हुकूमत सिर्फ 2.5 साल रही थी, तकरीबन 30 मंथ्स, सिर्फ 2.5 साल, लेकिन उसके अंदर ये हाल था। आज देखें, हम सब उमर बिन अब्दुल अजीज को जानते हैं, देखो और भी बहुत सारे खलीफा आए उनसे पहले भी, बाद में भी, उनका कोई नाम और निशान भी किसी को नहीं पता, कोई उनके नाम तक नहीं जानता, बड़े बड़े जुल्म किए उन्होंने। लेकिन इन्होंने जमीन को ऐसा इंसाफ से भरा, मालदारों से सदका वसूल किया, फकीरों में बांट दिया, क्योंकि इनसे पहले बहुत जुल्म हो रहे थे। तो इनके जमाने में लोग इतने मालदार हो गए थे, इतने खुशहाल हो गए थे, फकीर फकीर नहीं रहते थे। एक साल जो जकात लेता था, अगले साल उसको जकात लेने की जरूरत नहीं होती थी। याहिया बिन सईद कहते हैं कि मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज ने अफ्रीका भेजा कि मैं वहां से सदका वसूल करने जाऊं। मैंने सदका वसूल करके फुकरा तलाश किए, वहां के फकीर ही नहीं मिला। ऐसा इन्होंने लोगों को गनी कर दिया था, क्योंकि लूट खसूट खत्म कर दी थी, और उसके लिए सबसे पहले खुद रोल मॉडल बने थे। इनके वक्त में कोई फकीर ही नहीं होता था। मालदार इतने अपने माल लेकर सदके के लिए घूमते थे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होता था। इनकी ये बात थी कि सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे सीखने की है इनकी जिंदगी से, कि इन्होंने अपनी जिंदगी में इस कदर लग्जरी देखी थी, और कैसे ये एक ऐसी लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट लाइफ की तरफ आए, कैसे ये इतने ठाट बाट में थे जैसे मैंने आपको बताया, वहां से छोड़ के इस तरफ आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी यकसर बदल दी थी। एक शेर पढ़ा करते थे जिसका तर्जुमा ये था कि वो शख्स कि जब उसके चेहरे पे धूप या गुबार पड़ता है तो उसको बुरा लगता है, वो अपनी रौनक को बाकी रखने के लिए साए का आदी है, लेकिन साए का आदी था मगर अन करीब एक दिन कब्र की खाक में लोट पोट होगा। तो मौत के डर से, उस वक्त के हिसाब किताब की वजह से बहुत खौफजदा रहते थे, कसरत से रोजे रखते थे, कसरत से नमाजें पढ़ते थे। इनकी बीवी कहती है, मैंने उम्र से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला किसी को नहीं देखा। जब बिस्तर पर लेटते थे तो हिसाब किताब के तसव्वुर से कांप जाते थे, और ऐसे लगता था जैसे सुबह तक आप खत्म हो जाएंगे, फौत हो जाएंगे, आपका जमाना ख्वाब की तरह खत्म हो गया, क्योंकि इतनी तेजी से गुजरा। और ये इतनी अपनी खिलाफत के सारे कामों के बावजूद अपनी इबादत में एक तरफ हो जाते थे और तन्हाई में इबादत किया करते थे। इन्होंने अपनी विरासत के अंदर तकरीबन 10 दीनार छोड़े थे, और इनके 11 बेटे थे, नहीं 17 दीनार छोड़े थे। 5 दीनार कफन पे खर्च कर दिए गए, 2 दीनार से कब्र खरीदी गई, 10 दीनार बचे थे। हर बच्चे को 1 दीनार भी नहीं पूरा मिला, 11 बेटे थे ना, तो 10 दीनार बच गए उनके सारा कफन दफन के बाद। और हश्याम बिन अब्दुल मलिक, ये जिसने कहा था ना कि हमने नहीं छोड़ना, हमने नहीं अपनी जायदादें देनी है, हमारे सर जब तक है हमारे बच्चों का क्या होगा, वो फौत हुआ तो उसकी विरासत कितनी थी कि उसके हर बेटे को 10 10 लाख दीनार मिले, 10 10 लाख दीनार। अब मैं जब एक दफा महदी जब मुल्के शाम आए तो फरमाते हैं कि उन्होंने अमीर उल मोमिनीन ने बुलाया उस वक़्त के जो थे, तो उन्होंने कहा अबू बैदल्ला बनू उमैया हमसे सबकत लेकर। आप बताएं कि वो कैसे थे, कैसे कोई नसीहत करें, कोई बताएं हमें बात। तो उन्होंने कहा कि क्या बात आपको बताऊं, क्या जो मैंने देखी है वो बताऊं या जो सुनी है वो बताऊं। तो उन्होंने कहा जो देखी है वो बताओ। उन्होंने कहा मैंने उमर की औलाद को देखा कि उनके वालिद ने 10 दीनार सिर्फ छोड़े, क्या बच्चों को मिला एक एक दीनार भी नहीं, लेकिन मैंने देखा कि उसके बाद उनके एक बेटा अल्लाह के रास्ते में एक दिन में 100 100 घोड़े देता था, और हशाम की औलाद को देखा जिनको 10 10 लाख दीनार मिले थे, उनको देखा कि वो मस्जिद के बाहर लोगों से भीख मांगा करते थे और लोग उनको सदका देते थे। अल्लाह अकबर, इन्होंने अपने बच्चों के लिए तकवा का सामान छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने कैसे बच्चों को माला माल कर दिया, और जो माल छोड़ के गए थे उनके बच्चे कैसे फकीर हो गए। हमारी आज यही प्रायोरिटीज होती ना, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ जाएं, उसके लिए हम दीवाने हुए जाते हैं, हम अपनी दुनिया बना लें उसके लिए दीवाने हुए जाते हैं, लेकिन एक चीज सिर्फ आ जा पूरी बातों में से, एक बात को अगर मैं और आप हम सब पल्ले बांध लें तो हमारी पूरी जिंदगी स्ट्रेट हो जाएगी, सिर्फ एक बात। और वो बात क्या है, दुनिया का कयाम बहुत थोड़ा है, बस सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा, उस सब बातें आपको भूल जाए ना, जब अल्लाह की नाफरमानी करने लगे तब भी याद रखिएगा दुनिया का कयाम बहुत थोड़ा है, जब लोगों की बातों का डर आए कि लोग क्या कहेंगे तो सोचिएगा दुनिया का कयाम बहुत थोड़ा है, जब नेकी करने में सुस्ती आए तो सोचिएगा दुनिया का कयाम बहुत थोड़ा, जब कोई हराम चीज करने को दिल करे तो सोचिएगा दुनिया का कयाम बहुत थोड़ा, जब लालच आए, जब हसद आए किसी से, या जब किसी से गिले शिकवे और कीने दिल में पैदा हो, या कोई आपके साथ ज्यादती कर जाए, तो ये सोचिएगा दुनिया का कयाम बहुत थोड़ा, और इसका धोखा बहुत ज्यादा है। ये थी आज की बातें, एक और उमर बिन अब्दुल अजीज अगर पैदा हो जाए तो आज भी उम्मत की किस्मत संवर जाए, अगर वैसे लोग दोबारा पैदा नहीं हुए, क्योंकि अगर हम जैसे लोग थोड़ा सा को भी कुछ मिलने के बाद आपे से बाहर हो जाते हैं, तो जिनके पास बहुत कुछ होता है हम उनको गालियां तो देते हैं, लेकिन शायद हम भी उनकी जगह पे हों तो हम भी कोई कम ना करें, क्योंकि ना वहां तकवा है और ना यहाँ तकवा है, जब तक तकवा नहीं है हम किसी पोजीशन पे भी होंगे वहीं पे हम हेरा फेरी करेंगे, वहीं पे हम दुनिया में गुम हो जाएंगे, वहीं पे हम दुनिया के कयाम को जब आरजी नहीं समझते ना, टेम्पररी नहीं समझते, वहीं पे हम ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं। अब वो कोई चौकीदार हो, कोई चपरासी हो, कोई क्लर्क हो, कोई कोई खादिम हो, आपके घर में काम करने वाली मेड हो, उसको आप क्या बुरा भला कहेंगे कि ये बेईमान है, ये ऐसे हैं, जबकि हम सभी ऐसे हैं अपनी अपनी पोजीशन पे, अपनी अपनी जगह पे। तो इस चीज को याद रखना है कि दुनिया का कयाम बहुत थोड़ा है। आज की जो दुआ है वो उनके लिए है जिनकी हमें सबसे ज्यादा जिंदगी में फिक्र होती है, और एक वो कौन है जिनकी अपने से भी ज्यादा फिक्र होती है, हमारी औलादें, और दूसरा ऊपर की तरफ जाए तो हमारे वालदैन। तो दोनों के लिए दुआ है, औलाद के लिए दुआ रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व दुर्रियातिना कुर्रतु आयुन व जालना लिलमुत्तकीना इमामा, बहुत ही प्यारी दुआ है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया कि है हमारे रब हमारे अजवाज यानी औरतें हैं तो उनके शौहर, आदमी हैं तो उनकी बीवी हैं, और हमारी औलाद से हमारी आंखों को ठंडक अता फरमा। आंखों की ठंडक जो है ना, इसमें कुछ नहीं कहा गया कि इनको ठीक कर दे, इनको ऐसे कर दे। आपकी आंखें किस चीज से ठंडी होती हैं? उनको अच्छा देख के, उनको सेहतमंद देख के, उनको खुशहाल देख के, उनको दीन पे चलता हुआ देख के, उनको हिदायत पे देख के, यही चीजें है ना जिनसे आंखों की ठंडक है, उनकी अच्छी किस्मत देख के। तो इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ। आपको कुछ ये नहीं अलग अलग मांगना नहीं पड़ रहा कि मेरी औलाद को ये दे दे, या मेरे शौहर को ये दे दे, या ये मेरे लिए सुकून का बायस बने, फरमा बरदार बने, नेक बने, लायक बने। सारी चीजें आंखों की ठंडक का बायस है। तो ये सब चीजें आपने इसमें मांग ली। वह जालना लिल मुत्तकीना इमाम, और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुत्तकी नहीं, मुत्तकीन का इमाम यानी सबसे आगे लीड करने वाले, मुत्तकीन में भी आगे बढ़ जाने वाले, ये हमें बना दे। और वालदेन के लिए बेहतरीन दुआ, चाहे वो जिंदा या वो जिंदा नहीं है, रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब मेरे वालदेन पे रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पे रहम किया था। तो ये भी बहुत ही प्यारी दुआ है, इसको सलाम फेरने से पहले ये छोटी सी दुआ है, इसको मांग लिया करे। इसी तरह औलाद के लिए ये जो दुआ है, इसमें सब कुछ आ गया, तो ये अपनी औलाद के लिए मांगा करे। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।